हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। पिछले अध्याय में आपने देखा कि झलक रणविजय के लिए बहुत कीमती बन गई है। फिर झलक और सिद्धार्थ की मुठभेड़ होती है। सिद्धार्थ उसे डांटता है और धमकी देता है, उसे नौकरानी बनाने की बात करता है। रणविजय सिद्धार्थ को अपनी बात से सहमति देने का मन बनाता है। सिद्धार्थ झलक को अतीत की याद दिलाता है और उसे वीडियो दिखाकर डराता है। अब आगे झलक पूरी तरह से शौक में रह गई थी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ ऐसा भी कोई स्टेप ले लेगा। और जब झलक को लगा कि शायद उसे डराने के लिए सिद्धार्थ मजाक कर रहा है, तो अचानक वहीं झलक के ही भाई के पास एक आदमी ने तुरंत फायर कर दिया था। ये देखकर झलक ने जोर से चीख मार दी थी और वो सिद्धार्थ की हर बात मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। और आज फिर जैसे ही सिद्धार्थ ने उसे वीडियो का हवाला दिया, झलक सारी बातें याद करके फिर से सन रह गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी जिंदगी के साथ हो क्या रहा है। एक ओर ये जंगली सिद्धार्थ है जो अपनी अहम और अपने घमंड में कुछ देखने या सच मानने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी ओर वो सन की रणविजय खुराना है जो कि उसे पाने के लिए न जाने क्या करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। कहीं न कहीं इस वक्त झलक पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी और फिलहाल उसके पास सिद्धार्थ की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो सोच रही थी कि अपने घमंड में सिद्धार्थ उसके भाई की जान तक ले सकता है, और झलक अपने भाई को किसी के घमंड के नीचे कुचला हुआ नहीं देखना चाहती थी। फिलहाल झलक के कदम हल्के हल्के थरथराए, वहीं सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शानदार मुस्कुराहट थी, क्योंकि कम से कम इस काम से झलक उससे काफी हद तक डर गई थी। उसे इस वक्त इसकी काफी हद तक खुशी थी। वहीं झलक मन ही मन सिद्धार्थ और रणविजय दोनों से ही गुस्से से भर उठी थी, और उसने मान लिया था कि सबसे अच्छा तो उसका दोस्त आर्यन है, लेकिन उसने आर्यन को दुख और तकलीफ के अलावा कुछ दिया ही नहीं। कहीं ना कहीं झलक को आर्यन के लिए आज बुरा लग रहा था। फिलहाल जैसे ही दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई, झलक ने अपने चेहरे की मायूसी को एक पल के लिए अपनी नकली मुस्कुराहट के पीछे छुपा दिया था। ठीक उसी वक्त दादी कमरे में आई थीं। अब दादी को वहां देखकर झलक हैरान हो गई और बोली थी, दादी अगर आपको कुछ काम था तो आप मुझे बुला लेतीं। मुस्कुराते हुए झलक को देखकर बोली थीं, अरे झलक बेटा, हमें काम था तो हमें ही आना था ना, हम तुम्हें क्यों बुलाते, तुम आओ हमारे पास, यहाँ बैठो। ये बोलकर दादी ने झलक को अपने साथ बेड पर बिठा लिया। तब सिद्धार्थ फोन सुनने के बहाने से आंखों ही आंखों में झलक को वार्निंग देता हुआ वहां से बाहर निकल गया। फिलहाल दादी झलक को देखकर बोली थीं, देखो बेटा, हम तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत साड़ी लेकर आए हैं। ये हमारी खानदानी साड़ी है, ये कोई आम साड़ी नहीं है। एक बार ये सिद्धार्थ की मम्मी ने ये साड़ी पहनी थी और उसने ये हमें दी थी, तब से हमने इसे संभाल कर रखा है, क्योंकि हमारी नई दुल्हन को एक बार ये साड़ी पहनकर हमारे आराध्य की पूजा करनी होती है। तो बेटा, अब तुम इस घर की नई बहू हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि इस रस्म को निभाओ, इसीलिए तुम्हें ये साड़ी पहननी होगी और हमारे आराध्य शिवजी की पूजा करनी होगी। और जहाँ पर हम पूजा रखते हैं वो कुछ किलोमीटर दूर एक बड़ा सा शिवजी का मंदिर है, वहीं पर तुम्हें वो पूजा करनी होगी बेटा। तब तक सिद्धार्थ वापस रूम में आ गया था और दादी की बातें सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए। वो बोला, दादी ये सब चीज करने की क्या जरूरत है, मैं ये सब नहीं मानता। अब दादी घूरकर सिद्धार्थ को देखने लगी और बोली, एक तो तुमने बिना किसी से पूछे इस तरह से शादी कर ली, और अब तुम हमें रस्में करने से भी रोक रहे हो, आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो सिद्धार्थ। दादी ने जैसे थोड़ा सा कड़क अंदाज में ये कहा, सिद्धार्थ तुरंत चुप हो गया था, क्योंकि दादी से ज्यादा बहस करेगा तो दादी की तबीयत बिगड़ सकती थी, और दादी की सेहत के साथ सिद्धार्थ कभी कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो एक पल के लिए शांत हो गया। तभी दादी आगे बोली, और शादी चाहे जैसी भी हालातों में हुई हो, लेकिन हमें पूरी मीडिया और पूरे समाज को इस बारे में सही से जानकारी देनी होगी, इसीलिए हमने तुम दोनों की शादी का अगले हफ्ते रिसेप्शन रखा है। रिसेप्शन वाले दिन हम ऑफिशियली झलक को तुम्हारी पत्नी अनाउंस तो करेंगे ही, साथ ही साथ हमने डिसीजन लिया है कि हम झलक को खुराना एम्पायर के 20% शेयर भी नाम कर देंगे। जैसा कि तुम जानते हो कि खुराना परिवार में शामिल होने वाली हर लेडी के नाम कुछ न कुछ कंपनी के शेयर होते हैं, इसीलिए हमने सोचा है कि हम झलक को भी उसी दिन कंपनी के शेयर दे देंगे। जैसे ही दादी ने ये कहा, सिद्धार्थ की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं। वहीं झलक इतने मान सम्मान और दादी के प्यार से एक बार फिर भाव विभोर हो गई और दादी के गले लग गई। वहीं सिद्धार्थ मन ही मन बोला, इस लड़की की सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। खुराना परिवार में आने का इसका मकसद यही था कि ये मुझसे शादी करके पूरे एम्पायर की मालकिन बन जाए। 20% शेयर का मतलब है कि कम से कम हर महीने 200 करोड़ रुपए इसके खाते में जमा होना। नहीं नहीं, मैं ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। ये सोचते हुए सिद्धार्थ अंदर अंदर जलता रहा। वो मन ही मन प्लान बना रहा था कि झलक को किस तरह से सबके सामने एक्सपोज करना है, क्योंकि अगर वो वीडियो लीक वाली बात सबके सामने साबित कर देता है तो दादी झलक से अलग तरह की नफरत कर बैठेंगी। और जब तक दादी के दिल में झलक के लिए प्यार और मोहब्बत है, वो चाह कर भी झलक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। झलक को नुकसान पहुंचाने का मतलब था सीधे सीधे अपनी दादी को दुख पहुंचाना। इसीलिए सिद्धार्थ ने उस होटल में जहां दादी की बर्थडे पार्टी फिक्स हुई थी, उसके सभी कर्मचारियों को पहले से ही रौनित के जरिए अपने फार्म हाउस पर बंदी बनवा लिया था। और जब तक वो खुद को शांत कर रहा था, वो उन्हें रोज टॉर्चर करवा रहा था। उनके साथ वहाँ जानवरों से भी ज्यादा बुरा सुलूक हो रहा था। केवल उनकी जान नहीं ली जा रही थी, लेकिन उनकी जान किसी भी तरह से बची हुई भी नहीं थी। लेकिन सिद्धार्थ खुराना ने सोचा था कि कोई भी पूछताछ करने से पहले उन्हें अच्छी तरह सजा देनी होगी। उसका यही स्टाइल था। कोई गुनाहगार हो या बेगुनाह, उसे फर्क नहीं पड़ता था। उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्सा, अपनी नफरत उन सब लोगों पर निकालना चाहता था जिन्होंने उस दिन पार्टी में उसे तमाशा बनते देखा था। उसी दिन उसने सभी होटल स्टाफ को अगवा करवा लिया था और किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगी थी, और वो लगातार उन्हें टॉर्चर कर रहा था। इन सब बातों को ऑलरेडी 2 दिन से ज्यादा हो चुके थे, और 2 से 3 दिन सिद्धार्थ का टॉर्चर झेलकर उन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। कुछ तो दम तोड़ने की पूरी तरह से कगार पर थे, लेकिन सिद्धार्थ खुराना ने रौनित को साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि अभी उन लोगों को मरने की भी इजाजत नहीं है। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ तब देर न करते हुए फार्म हाउस की ओर रवाना हो चुका था। वहीं झलक अब दादी के पास बैठी थी। झलक ने हल्का सा दादी का हाथ थाम कर बोला था, दादी आप यार सब कुछ क्यों कर रही हैं? आप अच्छे से जानती हैं कि इस रिश्ते में किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं सिद्धार्थ की जिंदगी में नहीं रहना चाहती, और मैंने आपको पार्टी वाले दिन भी ये बात साफ साफ बोली थी कि मैं किसी भी तरह खुराना परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मैं आपसे प्यार करती हूँ, ये बात अलग है, लेकिन उस दिन पार्टी में जो तमाशा हुआ, यकीन करिए दादी, उसमें मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी को अटेंड करने के बाद हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चले जाना चाहती थी। मैं तो कभी भी आप लोगों की जिंदगी में आना भी नहीं चाहती थी। मुझे नहीं पता किसने इस बात का फायदा उठाया और मेरी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह कर दी।
सच दादी, मैं इस वक्त आप सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। झलक जो हमेशा से ही बिंदास थी, वो बिल्कुल भी किसी चीज को लेकर कितनी ही देर तक रो धोकर नहीं जी सकती थी। उसने पूरे तरीके से जो कुछ उसके दिल में था दादी से कह दिया था, और अब दादी को इन सारी साजिशों में उलझाकर और परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जिस तरह से सब लोगों ने वहां पार्टी में जो ड्रामा हुआ उसे लेकर उल्टी सीधी बातें झलक और सिद्धार्थ के बारे में बोली थीं, ऊपर से आकांक्षा ने जो ड्रामा क्रिएट किया था, वो सब वो दादी को नहीं बताना चाहती थी। ये वैसे भी उसकी लड़ाई थी और उसे अकेले ही लड़नी थी। फिलहाल वो अपना दिल थोड़ा सा हल्का कर रही थी।